भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 78 पृष्ठ संख्या 561। मेरे पीछे बोलिए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। शब्दार्थ बोलिए, यत्र जहां योग ईश्वरः योग के स्वामी कृष्णः भगवान कृष्ण, यत्र जहां पार्थः पृथापुत्र धनुधरः धनुधारी तत्र वहां श्री ऐश्वर्य विजयः जीत भूति विलक्षण शक्ति ध्रुवा निश्चित नीति नीति मति मम मेरा मत। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलिए, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
ये श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। ये श्लोक कौन कह रहा है कौन कह रहा है? ये श्लोक संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, अंतिम श्लोक भगवद गीता का और अंतिम निर्णय संजय का। क्या? यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है। यत्र पार्थ हो धनुर्धरा, और जहां पर पार्थ धनुर्धर है। योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ हैं। तत्र श्रीर विजयो भोदिर ध्रुवानी तिरम तिरम में, चार चीजें वहां पर हैं। पहला तो श्री ऐश्वर्य है, दूसरा विजय है, तीसरा भूति विभूति है संपन्नता, और चौथा ध्रुवानी तीर निश्चल नीति है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भगवत गीता का प्रारंभ हुआ जिज्ञासा से धृतराष्ट्र की। क्या जिज्ञासा? कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध भूमि में है? मतलब धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है कि क्या होने वाला है, है? और यहां गीता के अंत में उसका समाधान क्या, कि जिस पक्ष में अर्जुन और कृष्ण है उसी पक्ष की विजय है, अचल नीति है, है? और संपत्ति है, विभूति है उसी पक्ष में। तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से भगवद गीता शुरू हुई और उसका समाधान अंत में है। संजय ने जो है निष्कर्ष निकाला है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वह भीष्म द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। कौन? धृतराष्ट्र, है ना, आशा। और संजय यहां पर उसकी आशा को निराश कर रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं, आशा मत करो, जिस पक्ष में अर्जुन और कृष्ण है तो उस पक्ष में ही विजय है और लक्ष्मी है और विभूति है उसी पक्ष में है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि उसे यानी धृतराष्ट्र को आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण स्त्री होगी। तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा और संजय का मत, मतिर मम, ये मेरा मत है। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की, किसने? संजय ने, कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। तो तत्र श्री, चार चीजें संजय ने बताई हैं, जहां कृष्ण है और अर्जुन है वहां पर चार चीजें हैं। पहली चीज क्या है? श्री। और दूसरी चीज विजय। तीसरी चीज विभूति। और चौथी चीज ध्रुवानीति, है ना? चार चीजें। तो पहली श्री, तो श्री में क्या है? छह प्रकार के ऐश्वर्य। श्री का मतलब यहां छह प्रकार के ऐश्वर्य, उनमें एक है क्या? त्याग, है ना? तो त्याग या वैराग्य भी है? तो जहां अर्जुन और कृष्ण, वहां पर श्री है। श्री का मतलब छह प्रकार के ऐश्वर्य, और छह प्रकार के ऐश्वर्यों में एक है क्या? वैराग्य, है ना? तो वो कौन सा वैराग्य है? प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। जहां अर्जुन और कृष्ण हैं, वहां पर श्री है। श्री का मतलब ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में छह प्रकार के ऐश्वर्य, उनमें से एक है वैराग्य, और ये कृष्ण का वैराग्य है क्या? अर्जुन के सारथी बनना, ये ऐश्वर्य है कृष्ण का। कृष्ण का एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, वो क्या है? कि वो अपने परम पद का त्याग करके अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार कर रहे हैं, है ना? ये कितना बड़ा त्याग है, कोई सोच सकता है? किसी का सारथी बनना, किसी का ड्राइवर बनना, जबकि कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, है ना? तो कितना बड़ा ऐश्वर्य है। तो जहां अर्जुन और कृष्ण है, वहां पर ये ऐश्वर्य है। तो श्री की व्याख्या प्रभुपाद जी इस प्रकार से कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। हाँ ठीक है, क्योंकि तो दुर्योधन राजा है, है ना? अगर जीत होगी तो युधिष्ठिर राजा होंगे। अर्जुन को क्या मिलना है? प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहे थे। अर्जुन को कुछ भी नहीं लेना है इस युद्ध से, वो तो युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं। अर्जुन तो केवल एक सैनिक की तरह से युद्ध कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी, निश्चित। तो स्त्री के बाद प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं विजय की। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धर पार्थ है, वहां पर स्त्री है और विजय है। तो विजय होगी किसकी? युधिष्ठिर की, क्यों? युधिष्ठिर के पक्ष में है अर्जुन और कृष्ण। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, युद्ध को ये निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा, या तो दुर्योधन शासन करेंगे या युधिष्ठिर। केवल दो ही व्यक्ति हैं, है ना? कंपटीशन जो है, जो हो रहा है, वो दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है कि नहीं? या तो दुर्योधन या युधिष्ठिर। तो संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहां पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तर उत्तर समृद्धि लाभ करेंगे। तत्र श्री विजयो, इसके बाद तीसरा क्या है? विभूति। विभूति का मतलब समृद्धि, है ना? तो तीसरी समृद्धि की चर्चा प्रभुपाद करते हैं। तो युधिष्ठिर को विजय प्राप्त होगी, और विजय के बाद क्या होगी? उत्तर उत्तर समृद्धि। उत्तर उत्तर समृद्धि मतलब सब प्रकार से, जो है ना, हर प्रकार की संपत्तियां, हर प्रकार की समृद्धियां प्राप्त होंगी युधिष्ठिर महाराज को। आगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। कठोर नीतिवादी, इसमें चौथी चीज जो संजय ने कही है ध्रुवा नीति। ध्रुवा नीति का मतलब क्या है? कठोर नीति, किसी प्रकार से नीति को बदलना नहीं। तो जहां अर्जुन और कृष्ण हैं वहां पर ये चारों चीजें हैं, स्त्री और विजय और विभूति और कठोर नीति। युधिष्ठिर की नीति बड़ी कठोर है, बहुत कठोरता से धर्म का पालन करते हैं युधिष्ठिर। प्रभुपाद लिखते हैं उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था, ध्रुवा नीति। युधिष्ठिर की जो है ना नीति बहुत कठोर है। कितने कितने बड़े संकटों में पड़े लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। तो जहां अर्जुन और कृष्ण हैं वहां पर ये चारों चीजें रहती हैं। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से ये चारों चीजों को समझाया इस तात्पर्य में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। हाँ, ये ध्रुवा नीति की चर्चा फिर कर रहे हैं कि भगवत गीता भी जो ना एक क्या है, नीति शास्त्र है। ध्रुवा नीति इसका ये मतलब है कि भगवत गीता में कौन है? अर्जुन और कृष्ण। चूंकि अर्जुन कृष्ण का ही संवाद है भगवत गीता, इसलिए भगवत गीता में भी ये चारों चीजें हैं। तो उसमें ध्रुवा नीति की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवत गीता कोई ऐसी नहीं कि दो मित्रों की बातचीत है खाली। दो मित्रों की बातचीत कैसी होती है? वो कहता है नहीं नहीं ये काम नहीं करना, तो दूसरा मित्र अरे यार कर ले, अरे चल कर यार, अरे नहीं नहीं यार मेरा मूड नहीं है, अरे नहीं 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 कर यार कर, चल 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 जल्दी कर इस काम को। तो ये ऐसा नहीं है कि भगवत गीता दो मित्रों की ऐसी बातचीत हो कि वो कह रहे हैं नहीं करना है, नहीं नहीं करना है कर कर, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता है। अगर दो मित्रों की ऐसी बातचीत होती हैं तो शास्त्र थोड़ी बनता है इससे। एक कहता नहीं करना, दूसरे कहता कर कर, दो दोस्त आपस में इस तरह से करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। तो ये भगवद गीता ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या सर्वशास्त्रमय गीता। भगवद गीता क्या है? संपूर्ण शास्त्र भगवद गीता में है। तो ये शास्त्र कैसे बन सकता है अगर केवल दो मित्रों की बातचीत हो? नहीं तो वैसे भगवान कृष्ण मित्र की लीला करते हैं, इन यहां पर मित्र के रूप में नहीं बोल रहे हैं, गुरु के रूप में बोल रहे हैं। और अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा? शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। ध्रुवा नीति, अचल नीति। भगवत गीता एक अचल नीति है जो कि कभी बदल नहीं सकती, एक ऐसी नीति है ना। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भगवत गीता में अनैतिक बातें बताई गई हैं, कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए जो उकसा रहे हैं ये क्या है? अनैतिक है ना। तो ये बहुत अपराध है जिस प्रकार की बातें करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। ये नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मनाभव मद भक्तो, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। धर्म नीति, भगवत गीता जो है धर्म नीति है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, ये 18वें अध्याय का मत है। 18वें अध्याय में चरम उपदेश भगवान का जो अंतिम उपदेश है वो क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षे श्यामि मा सुचः, चरम उपदेश है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण की शरण लेना है। और बाकी जितने विधि विधान है वो क्या है? साधन है, है ना, साधन है। ज्ञान और ध्यान जो है ना, ये सब क्या है? साधन है, है? लेकिन लक्ष्य क्या है? कृष्ण की शरणागति। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये भगवद गीता के उपदेशों का सार है, है? भगवद गीता के उपदेशों का सार क्या है? कृष्ण की शरणागति, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों यानी कर्म कांड का मार्ग, ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुहितर हैं तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो गुह्य उपदेश किया है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना, और गुह्यतर क्या है? ज्ञान, ज्ञान का मार्ग गुह्यतर है, लेकिन गुह्यतम क्या है? पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करना, गुहितम। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, फिर अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। ज्ञान के सारे विभाग का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान, उसी के अंश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग को उसने जान लिया। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है, और दो श्रेणी के होते हैं, जीव दो श्रेणी के होते हैं, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। भगवद गीता में पांच विषयों का वर्णन है, एक तो ईश्वर, तो भगवद गीता में पांच विषयों का वर्णन है, एक तो ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और पांचवा कर्म, है ना। तो जहां तक ईश्वर तत्व की बात है तो उसमें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना, ये तीन स्तर हैं, है? और फिर जहां तक जीव तत्व की बात है तो प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के जीव हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध है। नित्य मुक्त जीव जो भगवान के धाम में रहते हैं, और नित्य बद्ध जीव जिस भौतिक जगत में रहते हैं। और ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है, और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। मतलब मूल रूप में अंश हैं कृष्ण के, मतलब ये नहीं है कि कभी कृष्ण थे और फिर कृष्ण से ये जीव पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। मूल अंश है जीव, मूल रूप में कृष्ण का अंश है, सनातन अंश है। कभी ऐसा नहीं है कि वो जो है भगवान था, जीव जो है कभी भगवान नहीं था, मूल अंश है। फिर प्रकृति तत्व, प्रकृति तत्व में प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। 24 तत्व हैं भौतिक प्रकृति के, तो 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बतलाया है। 5वां या 6वां श्लोक है, महाभूतान्य अहंकारो, है ना। तो 24 तत्व हैं भौतिक प्रकृति के। और फिर काल तत्व क्या है प्रभुपाद लिखते हैं? सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है, शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है, मतलब सृष्टि पालन संहार ये चलते रहते हैं। और बहिरंग शक्ति द्वारा इसका सृजन और संहार होता है, ये दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है, ये काल का प्रभाव है। तो इस प्रकार से आगे प्रभु लिखते हैं, भगवद गीता में पांच प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है, एक तो भगवान, दूसरा भौतिक प्रकृति, तीसरा जीव, चौथा शाश्वत काल, तथा पांचवा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद। ये दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मतलब यही है कि भगवान सबसे अलग है, लेकिन भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। आगे, जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है, और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हलादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हाँ, तो स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दी है, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करे जीव तो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। और हलादिनी शक्ति कृष्ण की अंतरंगा शक्ति में एक हलादिनी शक्ति है, तो हलादिनी शक्ति के प्रभाव से जीव आनंद प्राप्त करता है भगवान के साथ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज महीने का भी अंतिम दिन है और भगवद गीता का भी अंतिम श्लोक है। तो 30 सितंबर को भगवद गीता पूरी हुई, संपूर्ण हुई। तो इस श्लोक में जो है संजय, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण की बात बता रहे हैं कि जहां अर्जुन और कृष्ण साथ साथ हैं, तो वहां पर सब प्रकार की विजय है और समृद्धि है। तो हमने कुछ अर्जुन और कृष्ण के बारे में जो बातें लिखी हैं, अर्जुन और कृष्ण की घनिष्ठता, इसको मैं थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूं। एक श्लोक है, पहले अध्याय का 14वां श्लोक, पहले अध्याय का श्लोक संख्या 14 में संजय ने कहा कि अर्जुन और कृष्ण दोनों ने एक साथ शंख बजाए। तो ये भी उसी प्रकार की बात है, अर्जुन कृष्ण दोनों ने एक साथ शंख बजाए। इस श्लोक में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने एक साथ शंख बजाए। इससे यह पता चलता है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण में एक दूसरे के प्रति अत्यंत घनिष्ठता थी। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन है, उसमें एक सख्य भक्ति है। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन है, उसमें एक सख्य भक्ति है, सख्य भक्ति भी है। अर्जुन उसी सख्य भक्ति का आचरण करने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भगवान भी अर्जुन के सारथी बनकर इस जगत को शिक्षा देते हैं कि कोई भी जीव भगवान के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर सकता है। भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अर्जुन तथा श्री कृष्ण के दिव्य संबंध को समझें। यदि कोई व्यक्ति गीता का केवल पाठ करे, चाहे वह गीता के शब्दों को ना भी समझ सके, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण तथा उनके दिव्य संबंध का स्मरण कर रहा हो, तो वह भी गीता पाठ से लाभान्वित होता है। इस बात की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुई है। दक्षिण भारत के रंगनाथ मंदिर में एक अशिक्षित ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा था। अशिक्षित होने के कारण वह शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा था, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण कर रहा था तथा यह सोचकर रोमांचित हो रहा था कि भगवान कितने दयालु हैं कि वे अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे हैं। उस ब्राह्मण की इस दिव्य स्थिति को ना समझकर बहुत से लोग उसके अशुद्ध गीता पाठ को देखकर हंस रहे थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण है। उन्होंने उस ब्राह्मण की ऐसी निष्ठा को देखकर उसे अपने गले से लगाया तथा उससे कहा कि तुम वास्तव में गीता का पाठ कर रहे हो। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हम दोनों अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन की संवाद का अध्ययन करेगा वह मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्नों तथा श्री कृष्ण के उत्तरों का अध्ययन करें तो श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेश को ना भी समझ पाए परंतु वह श्री कृष्ण भगवान हैं इस बात पर श्रद्धा रखता हो और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं इस बात को समझता हो तो वह भी गीता का श्रवण करके पापों से छूट जाता है। और कुछ ना समझो अगर कि भगवद गीता में क्या है, हैं? अगर दो बातों को समझ लो, क्या? एक तो श्री कृष्ण भगवान है और दूसरी बात क्या कि अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। तो इस प्रकार से भी अगर गीता का श्रवण करते हैं आप तो पापों से छूट जाएंगे। श्री कृष्ण के सखा होने के कारण अर्जुन के मन में श्री कृष्ण का संग करने की अत्यंत तीव्र इच्छा रहती थी। खांडव वन का दाह करने के लिए अग्नि देवता उस समय ब्राह्मण के रूप में याचना करने के लिए आए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ थे। अच्छा मौका था अपना काम पूरा करने के लिए। किस समय आए अग्नि देवता? जब देखा अर्जुन कृष्ण दोनों साथ साथ हैं। जिस समय अग्नि देवता उनसे मिले उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे को अपने जीवन के अनुभव बतला रहे थे। अग्निदेव भी उनकी इतनी घनिष्ठता को देखकर चकित हो गए। अर्जुन कृष्ण में कितनी घनिष्ठता है, बड़ा आश्चर्य।